यशाया अध्याय 42। परमेश्वर एक और दास के बारे में कहता है जो उसका धर्मी दास है, मसीह यीशु। अब यशाया मसीह के विषय में भविष्यवाणी देता है। यशाया अध्याय 42 पद 1। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। आपको ध्यान होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तब स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी थी, मत्ती अध्याय 3 पद 17, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने कहा था जिससे मेरा जी प्रसन्न है। यशाया अध्याय 42 पद 1, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। आपको ये भी ध्यान होगा कि उसी समय आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरा और पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये यीशु के बपतिस्मे और उससे संबंधित घटनाओं की भविष्यवाणी है। मेरे दास को देखो जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। यशाया अध्याय 42 पद 1। वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार की ये भविष्यवाणी है। यशाया अध्याय 42 पद 2। न वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर इसराइल की यही दशा थी। यशाया अध्याय 42 पद 3 और 4। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दैने हाथ बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके हाथ में राजकाज दे दिया जाए। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों 2:8-9 पद, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हरेक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। वह उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब राज्य उसके हाथ में दे दिया जाएगा। अतः ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि उसने पृथ्वी के न्याय के लिए उसे नियुक्त किया है। यशाया अध्याय 42 पद 5। परमेश्वर जो आकाश के सृजने और तानने वाला है, उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उसके लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है। अब परमेश्वर स्वयं अपनी परिभाषा देता है। फ्रांसिस शेफर ने कहा था कि समय आ गया है जब हमें केवल परमेश्वर के बारे में नाम से चर्चा नहीं करना है, क्योंकि अनेक ईश्वर हैं और मनुष्य उनकी उपासना करता है, या परमेश्वर के विषय मनुष्यों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। अतः जब आप परमेश्वर के बारे में कहते हैं, तब यदि आप उस परमेश्वर की परिभाषा नहीं देते जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, तो वे नहीं जानते कि आप किस परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं। अतः हमें परमेश्वर की परिभाषा देनी है कि वो अनंत और जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि अपनी परिभाषा देते हुए परमेश्वर कुछ आगे बढ़ जाता है, जो आकाश के सृजने और तानने वाला है, उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उसके लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। आपको ध्यान होगा कि दानियल की पुस्तक में जब राजा बेलशेजर ने उन सोने के पात्रों को जो उसका पिता नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से उठाकर लाया था, उन्हें मंगवाकर उनमें मदिरा पी थी। ये पात्र परमेश्वर के लिए अभिषेक थे कि केवल उसी के लिए प्रयोग किए जाए। जब वे उन पात्रों में मदिरा पी ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो अपनी सोच में घबरा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने आपस में टकराने लगे। हम इस घटना की भविष्यवाणी भी अध्याय 45 में देखेंगे, जिसमें इस व्यक्ति के घुटनों के टकराने का उल्लेख है। दानियल की पुस्तक में ये भी लिखा है कि एक हाथ की उंगलियों ने दीवार पर लिखा, परंतु राजा बेलशेसर के ज्ञानी उस भाषा को पढ़ नहीं पाए। तब रानी मां ने कहा, राज्य में यहूदी जाति का एक व्यक्ति है और तेरे पिता के समय में परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि से परिपूर्ण किया हुआ था। उस युग में वो स्वप्न और दर्शनों का अर्थानुवाद करता था। अतः दानियल को बुलाया गया था, और इससे पहले कि वो पढ़कर उसका अर्थ बताए, उसने राजा को भाषण सुना दिया। उसने कहा कि जब उसका पिता आम व्यक्ति था, यहोवा ने उसे उठाया और उसे ये बाबुल का महान साम्राज्य प्रदान किया, और जब उसने यहोवा के सामने अपने को ऊपर उठाया, तब परमेश्वर ने उसे पागल होने दिया और वो एक वन पशु की नाई 7 ऋतुओं तक वैसा ही रहा। इसके बाद परमेश्वर ने उसे उसका मानसिक संतुलन और ये राज्य लौटा दिया। परंतु तूने इस यहोवा को महिमा निवित नहीं किया, जिस यहोवा के हाथ में तेरी सांस है। तेरा दोष यही है, वो परमेश्वर की दी हुई सांस से जीवित था, परंतु उसी सांस से वो परमेश्वर की निंदा कर रहा था। परंतु परमेश्वर के हाथों में ही तो उसकी सांस थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस प्रकार उस पर निर्भर है? यहां परमेश्वर उस पर मनुष्य की निर्भरता की घोषणा कर रहा है। मैंने उन सब वस्तुओं की सृष्टि की है जो पृथ्वी पर है, और वास्तव में उनमें सांस मैंने ही दी है। यशाया अध्याय 42 पद 6 और 7। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। जब पौलुस राजा अग्रिप्पा से बात कर रहा था और उसके सामने अपना प्रतिवाद कह रहा था, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 26 में पौलुस ने अग्रिप्पा को स्पष्ट कह दिया कि किस प्रकार प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कहा कि परमेश्वर ने पौलुस अर्थात मुझे अन्य जातियों में से मुक्त कर लिया और कहा। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17 और 18 पद, मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखों को खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। यहां पौलुस यशया की पुस्तक का भाग दोहरा रहा है। यहां भी परमेश्वर कहता है कि वो जाकर अपने लोगों को अन्य जातियों में ज्योति बनाए कि अंधी आंखें खोली जाए, बंदियों को बाहर लाया जाए और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाला जाए। प्रभु हमें पाप के उस बंदीगृह से निकाल उस अधिकार से मुक्त कराए जो मनुष्य के जीवन पर शैतान का है। यशाया अध्याय 42 पद 8, मैं यहोवा हूं, मैं हूं, और निश्चय ही ये अनुवाद होना ही चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको इसका अनुवाद करना ही है, मैं यहोवा हूं। यशाया अध्याय 42 पद 8 में आगे लिखा है, मेरा नाम यही है। यहां ध्यान दीजिए कि जब पुराने नियम में भी प्रभु शब्द आता है तो ये पदवी नहीं है, परंतु नए नियम में प्रभु शब्द का एक पदवी है। ये शब्द यूनानी भाषा का है, क्यूरियोस। पुराने नियम का शब्द अदोनाई जो इब्रानी भाषा में है उसका अर्थ है प्रभु, परंतु ये एक पद है। अतः जहां भी अंग्रेजी संस्करण में यहोवा के स्थान पर प्रभु शब्द काम में लिया गया है वहां LORD लॉर्ड अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इब्रानी में अब चूंकि ये चार व्यंजन है अतः उनका सही उच्चारण हमें ज्ञात नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। यशाया अध्याय 42 पद 8 में आगे लिखा है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। अब यहां एक गंभीर बात है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा और उसका कार्य करना चाहता है वो सदा स्मरण रखे कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी अन्य बात को ना देगा। अनेक सेवक हैं जो अपने आप को महिमाविंत करना चाहते हैं। यीशु ने कहा मती अध्याय 5 पद 16, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमें ये ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की ऐसी सेवकाई में ना रहें जहां हमें महिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही हो। ये एक स्थायी संकट है क्योंकि हमारी देहिक अभिलाषा महिमावन प्रतिष्ठा नाम तथा सम्मान की होती है, परंतु देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा। जिस क्षण हम परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर लाना आरंभ करते हैं उसी क्षण हम परमेश्वर के सामने समस्या में पड़ जाते हैं। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। परमेश्वर उनकी मूर्तियों पर अपना क्रोध निकाल रहा था। मनुष्य के लिए कैसी तर्कहीन बात है कि वो अपने लिए एक मूर्ति बनाए। उसने कहा, यशाया अध्याय 42 पद 9, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। ये बातें जो उसने उनकी मूर्तियों को चुनौती में कही थी, परंतु वो कहता है, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। यशाया अध्याय 42 पद 10 से लेकर 13 तक। हे समुद्र के सब चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला पेत्रा के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुण अनुवाद करें। यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वो ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। पुराने नियम में अनेक स्थानों में उल्लेख है कि जब यहोवा अपनी महिमा में आएगा, वो सिम की नाई गरजता है जो अपना आहेर फसाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में वो यीशु के फिर से आने के विषय में कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 3, जैसे सिम गरजता है, मैं तो उस गर्जन को सुनने के लिए उत्सुक हूं। पुराने नियम में एक और उल्लेख पाया जाता है जो यरमिया की पुस्तक 25 अध्याय 30 पद में है। संपूर्ण पुराने नियम में इस संदर्भ में अनेक उल्लेख है, ये उन उल्लेखों में से एक है। यशाया अध्याय 42 पद 14, बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन सादे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा की नाई चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा। वो कैसा धीरजवन परमेश्वर है। मसीह के आगमन से और अब तक लगभग 2000 वर्षों तक परमेश्वर ने पृथ्वी को इस परिस्थिति में रहने दिया है। परमेश्वर कहता है, बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा। मैं तो कभी कभी अचंभा करता हूं कि परमेश्वर कैसे इतना धीरजवंत हो सकता है। मैं आश्चर्य करता हूं कि परमेश्वर ऐसे कैसे होने देता है। परमेश्वर कहता है, मैं मौन साधे रहा, मैं अपने आप को रोकता रहा, परंतु अब समय आ गया है। यशाया अध्याय 42 पद 15 और 16, पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों के द्वीप कर दूंगा और तालों सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। ध्यान दीजिए कि पुनरुद्धार से पूर्व सब उजाड़ हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जब परमेश्वर ने यरमिया को भविष्यवाणी के लिए भेजा था, तब उससे कहा था, यरमिया पहला अध्याय 10 पद, मैंने आज के दिन तुझे जातियों पर और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। कभी कभी परिस्थिति ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि नया निर्माण करने के लिए पहले का सब कुछ गिराना पड़ता है। ऐसा ही यरमिया के युग में हुआ। राष्ट्र ऐसा भ्रष्ट हो चुका था कि उसके पुनरुत्थान के लिए उसका गिराया जाना आवश्यक था। यहां भी कहने का अर्थ वही है कि पहले परमेश्वर के दंड द्वारा उजाड़ा जाना अर्थात महाक्लेश का आना आवश्यक है, इसके बाद परमेश्वर उनका नव निर्माण करेगा। वो तब अंधों की आंखें खोलेगा, उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। यशाया अध्याय 42 पद 16 से लेकर 19 तक, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहरों सुनो, हे अंधों आंख खोलो कि तुम देख सको, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है। इसराइल परमेश्वर की बातों के प्रति अंधा है। यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 13 पद 14, और उनके विषय में यशया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का राष्ट्र मसीहा के आगमन पर अंधा था, उन्होंने उसे पहचाना नहीं। यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना 1:11 पद, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु ने उनके अंधेपन का उल्लेख उनसे किया था, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है। यशाया अध्याय 42 पद 19 से लेकर 24 तक, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है, मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यहां भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गढ़ियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दो। तुम्हें से कौन इस पर कान लगाएगा, कौन ध्यान धर के होनहार के लिए सुनेगा। किसने याकूब को लुटवाया और इसराइल को लुटेरों के वश में कर दिया। राष्ट्र का किसने तख्ता पलटा। यशाया अध्याय 42 पद 24 और 25, क्या यहोवा ने ये नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना ना चाहा और ना उनकी व्यवस्था को माना। इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वो ना समझा, वो जल भी गया तो भी ना चेता। इस प्रकार उनका विनाश हुआ और उन्हें देश से खदेड़े गया, तब भी वे ना जान पाए कि इसका एकमात्र कारण था उनके द्वारा मसीह का त्याग, प्रतिज्ञा के मसीहा का। इसी कारण उन पर ये विपत्ति आई।